राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों का स्वागत है फिर से हमारे बुधवार के भगवद गीता प्रवचन में। शायद याद होगा कि हम भगवद गीता का पहला अध्याय शुरू किए थे और कौन से श्लोक तक पहुंचे थे? पंद्रहवें श्लोक तक पहुंचे थे हम, तो उसके आगे से आज शुरुआत करेंगे। परंतु उससे पहले हम पूरे अध्याय का पाठ करेंगे जैसे हम किया करते थे। तो सब साथ बोलेंगे। धृतराष्ट्र उवाच, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः, मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। संजय उवाच, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यं उपसंगम्य राजा वचनम्। पश्यैतां पांडुपुत्राणां आचार्य महतीं चमुं, व्यूढ़ां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि, युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान्, पुरुजित कुन्तिभोजश्च शैभ्यश्च नरपुङ्गवः। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान्, सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोधद्विजोत्तम, नायका मम सैन्यस्य सम्यार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिं जयः, अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च, अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः, नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं, पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थितः, भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य संजयनं हर्षं कुरु वृद्ध पितामह, सिंहनादं विनद्योच्चै शंखं दद्मौ प्रतापवान्। ततः शंखश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा, सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलो भवत्। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ, माधव पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदत्मतुः। पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय, पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः अनंत विजयम् राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेवास शिखंडी च महारथ दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखं दद्मो पृथक् पृथक् सघोषो धातृराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातृराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र सम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मे च्युत यावद् एतान् निरीक्षेऽहम् योद्धु कामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहम् य एतेऽत्र समागतः भारतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रिय चिकीर्षव ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तम भीष्मद्रोण प्रमुखत सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरु निति तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थ पितृन्नथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातृन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धुन्नवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विशिदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्न्योमवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो नु पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमे वस्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पितरः पुत्रास्तथैव च पितामह मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नातोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु महि कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीति स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रये तस्मात् हत्वैतानाततायिन तस्मान् नारहा वयम् हन्तुम् धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनम् हि कथम् हत्वा सुखिनस्याम माधव यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभौ पहत चेतसः कुलक्षयकृतम् दोषम् मित्रे द्रोहे च पातकम् कथम् न ज्ञेयम् अस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षयकृतम् दोषम् प्रपश्यद्विर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्म सनातन धर्मे नष्टे कुलम् कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुषन्ति कुलस्त्रियः श्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकर संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया दोषरेतैर्कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकै उत्साद्यन्ते जातिधर्म कुलधर्मश्च शाश्वता उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्यानां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्युनुशुश्रुम अहो बतं महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजन उद्यत यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणय धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत् सञ्जय उवाच एवं मुक्त्वा अर्जुनः साङ्ख्ये रथोपस्त उपाविशत् विसिज्र साशरं चापं शोकसंविघ्नमानस ओम श्रीमद् भगवद् गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्यायः। हरे कृष्णा, सभी का स्वागत है हमारे भगवद गीता की क्लास में। कुछ शायद डेढ़ महीना पहले हम डेढ़ से दो महीना पहले हम भगवद गीता के पहले अध्याय के 15वें श्लोक तक पहुंचे थे। किसी को याद है कौन सा श्लोक है वो? हाँ, कौन सा है? हाँ, कौन सा श्लोक है वो? क्या पांचजन्यम ऋषिकेश, कि भगवान श्री ऋषिकेश उन्होंने अपना पांचजन्य शंख बजाना प्रारंभ किया और उनके पश्चात देवदत्तम धनंजय, कि धनंजय पार्थ अर्जुन उन्होंने अपना देवदत्त नामक शंख बजाया और तत्पश्चात भीमसेन उन्होंने अपना महाशंख बजाया, उसका नाम क्या था? पौंड्र, पौंड्र उनका वो उसका नाम था, वो शंख का नाम था। तो अब आज हम तीन श्लोक लेने वाले हैं जिसमें जितने अन्य पांडव जिन्होंने अपने अपने शंख बजाए उन सभी शंख ध्वनि का विवरण दिया गया है। तो 16, 17 और 18वां ये श्लोक आज हम लेंगे। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुल सह देवश्च सुघोष मणिपुष्पको। काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहू शंखान् दद्मो पृथक् पृथक्। तो ये श्लोक कौन किसे कह रहा है, याद है? हाँ, अब तक संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं, और जो धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा था कि कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर क्या क्या कर रहे हैं मेरे तथा पांडु के पुत्र, और सबसे पहले दुर्योधन के विषय में संजय बताते हैं, और तत्पश्चात अब पांडवों के विषय में। और संजय जब पांडवों के विषय में बता रहे हैं तो बहुत प्रेम से और लगाव से बता रहे हैं पांडवों के विषय में, और संजय जब धृतराष्ट्र को पांडवों के विषय में बताते हैं तो बिना भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में नहीं बता सकते, क्योंकि पूरी महाभारत की रचना व्यासदेव जी ने इसलिए की थी कि भगवद गीता वो हम सबको दे सके, और इसलिए संजय वो इसी की प्रतीक्षा में थे। आज क्लास सुनने के लिए 84 लाख योनियां शायद आई हैं। तो संजय इसी की प्रतीक्षा में थे कि कब धृतराष्ट्र ये प्रश्न पूछे कि पांडवों ने क्या किया, और जैसे ही पांडवों के विषय में धृतराष्ट्र पूछेंगे तो वैसे ही बिना भगवान श्री कृष्ण के उल्लेख किए हुए पांडवों के विषय में क्या कहा जा सकता है, बिना भगवान के भक्त क्या, और बिना भक्त के भगवान क्या। तो इसलिए संजय वो बहुत उत्साहित थे। अब जब ये इन श्लोकों में वो पांडवों के विषय में और भगवान श्री कृष्ण इनके विषय में बता रहे हैं, और वो भी धृतराष्ट्र को, ये एक बात है कि जब हम भगवान के विषय में किसी अन्य भक्त को बताते हैं, परंतु जब भगवान के विषय में किसी अभक्त को बताया जाता है तो ज्यादा उसमें उत्साह होता है, क्योंकि भक्तों के विषय में चर्चा, भक्तों के बीच में भगवान के विषय में चर्चा, ये तो स्वाभाविक है। परंतु जब भगवान के विषय में किसी ऐसे व्यक्ति को बताया जाए जिसने भगवान के विषय में कभी कुछ नहीं सुना, और जो कभी भगवान की भक्ति करने के लिए प्रेरित नहीं हुआ है, तो इसलिए संजय देख रहे थे कि धृतराष्ट्र जो अपने बचपन से लेके अब तक केवल वो भगवान श्री कृष्ण का विरोधी ही रहा है, तो इस धृतराष्ट्र को भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताना, और वो भी नहीं केवल भगवान श्री कृष्ण क्या सुनाने जाने वाले हैं, इस दिव्य ज्ञान को ये धृतराष्ट्र सुन पाएगा, इसके अभिलाषा में संजय बहुत उत्साहित थे। इसलिए यदि आप देखोगे तो जब शंखनाद या शंख ध्वनि हुई दोनों पक्षों की तरफ से, तो ज्यादा मात्रा में पांडवों की तरफ से बताया गया है कि इनकी तरफ से कितने लोगों ने अपने अपने शंख बजाए। ये जो 3 श्लोक आज हम लोग ले रहे हैं, इसमें केवल संजय इतना ही बता रहे हैं कि कितने योद्धाओं ने पांडवों के पक्ष से शंख बजाए, बस एक एक कर उनका नाम लिया जा रहा है कि उनके शंख का नाम क्या था और वो कौन थे, शंख कैसे बजाया उन्होंने। अब सोचिए, कोई व्यक्ति ये प्रश्न पूछ सकता है कि भगवद गीता जैसा ग्रंथ जो कि हमें जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकालने के लिए सुनाया गया, भगवान का गीत, तो इसमें इतने विस्तार से केवल ये सारी बातें क्यों कही गई है कि किसने कौन सा शंख कैसे बजाया। यदि हम केवल बाहरी रूप से इन श्लोकों को पढ़ेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा कि इनकी गहराई क्या है, इनका तात्पर्य क्या है। जब संजय एक एक शब्द धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं और हम सबको, तो इसके पीछे क्या छिपा हुआ है, क्या गहरा अर्थ छिपा हुआ है, ये समझना आवश्यक है। तो सबसे पहले ये जो तीन श्लोक हैं इनको यदि हम देखें तो पांडव सेना से 18 योद्धाओं ने शंख बजाए। शुरुआत भगवान श्री कृष्ण से, क्योंकि वो भी पांडव सेना में ही थे। तो वहां से लेकर ये जो 18वां श्लोक है यहां तक, 15वें श्लोक से लेकर 18वें श्लोक तक संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि 18 योद्धाओं ने अपने अपने शंख बजाए। तो व्यासदेव जी बताते हैं कि ये जो 18, इसकी जो संख्या है, इसका एक महत्व महाभारत में और भगवद गीता और सारे वैदिक ग्रंथों में आया है। तो कहां कहां ये 18 इसकी संख्या आई हुई। सबसे पहले भगवद गीता में कुल मिलाकर कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला और युद्ध में कुल मिलाकर 18 अक्षौहिणी सेनाएं थी। एक छोटा सा क्विज आपके सामने रखते हैं, यदि याद है आप लोगों को कि इसकी चर्चा हमने की थी कि कौन से पक्ष में कितनी सेनाएं, कितनी अक्षौहिणी सेनाएं थी। 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की थी और केवल 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की थी। तो यदि इसमें हम देखें तो पांडवों की सेना मात्रात्मक दृष्टि से बहुत कम थी, परंतु गुणात्मक दृष्टि से पांडवों की सेना को कोई हरा नहीं पा सकता था। क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान वहां पर उपस्थित थे। तो यहां पर 18 ये संख्या आती है। फिर से महाभारत ग्रंथ में 18 पर्व हैं। भगवद गीता कौन से पर्व में आती है? हाँ, युद्ध खंड और रामायण हो गया युद्ध पर्व भीष्म पर्व में आती है। भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व में आती है। जैसे कि भागवत को स्कंधों में विभाजित किया गया है, रामायण को खंडों में, वैसे ही महाभारत को पर्व में विभाजित किया गया है। तो 18 पर्व हैं महाभारत में और व्यासदेव जी द्वारा रचित पुराण कितने हैं? 18 पुराण हैं। और जो अमल पुराण है श्रीमद् भागवत, कितने श्लोक हैं? 18,000। तो आज मैं दिन भर रिसर्च कर रहा था कि ये जो 18 नंबर है ये कहां कहां ये संबंधित है। तो और भी हम निकाल सकते हैं, परंतु केवल इतना ही, ताकि आगे जब मैं क्विज लूं, टेस्ट लूं, परीक्षा लूं, तो थोड़ा कम रहेगा होमवर्क, तो याद अच्छा रहेगा। तो यहां पर इन 18 योद्धाओं के विषय में बताया गया है। तो सबसे पहले युधिष्ठिर महाराज, कि युधिष्ठिर महाराज, उन्होंने अपना अनंत विजयक नाम शंख बजाया। युधिष्ठिर महाराज के शंख का नाम था अनंत विजय। यह बात ध्यान रखना होगा कि ये सारे जो शंख हैं इनको नाम दिया गया, ये कोई जड़ वस्तु नहीं है, ये कोई पदार्थ नहीं है। जैसे कि इस भौतिक संसार में हम देखते हैं कि यदि कोई कुर्सी है तो कुर्सी को कोई नाम नहीं रखता कि कुर्सी का नाम हुआ दौलत राम। परंतु जो कुर्सी पे बैठता है उसका नाम होता है। आजकल तो उसे भी लोग खाली चेयरमैन बोलते हैं, नाम भी नहीं लेते कि संस्था के चेयरमैन है फलाने फलाने कोई। परंतु वैदिक संस्कृति में, क्योंकि वैदिक संस्कृति इसमें सभी व्यक्ति हैं और व्यक्तिमत्व को इतना महत्व दिया जाता है, पर्सनलिज्म और पर्सनैलिटी इसको इतना महत्व दिया जाता है, इसलिए भगवान के जितने भी आयुध हैं जैसे शंख चक्र गदा पद्म इन सब के नाम हैं। और वैसे भी यहां पर देखिए युद्ध में शंख का क्या काम, किसी को मारने के लिए शंख का क्या काम। परंतु फिर भी एक ऐसी वस्तु युद्ध भूमि में कि बाहरी रूप से कोई इतना महत्व नहीं दिख रहा शंख का, परंतु फिर भी शंख को भी एक नाम दिया गया है। और इसलिए संजय धृतराष्ट्र को नाम ले लेकर विस्तार से बता रहे हैं कि कौन कौन शंख बजे, कौन कौन से शंख बजे। तो अनंत विजय ये नाम इनके शंख का था। तो अनंत विजय के दो अर्थ बताए गए हैं, एक तो विजय का कोई अंत नहीं। तो युधिष्ठिर महाराज इनके पास जो शंख था ये युधिष्ठिर महाराज के चरित्र को और युधिष्ठिर महाराज की योग्यताओं को दर्शा रहा था। तो युधिष्ठिर महाराज ये जब भी किसी युद्ध में भाग लेते या युधिष्ठिर महाराज जब किसी के भी संपर्क में आते तो हर समय विजयी रहते। इसलिए युधिष्ठिर महाराज के विषय में कहा गया है अजात शत्रवः, कि युधिष्ठिर महाराज के कभी कोई शत्रु नहीं बन पाए। हालांकि दुर्योधन वो अपने आप को युधिष्ठिर महाराज का शत्रु मान रहा था, परंतु युधिष्ठिर महाराज अपने आप को दुर्योधन का शत्रु कभी नहीं माने और इस बात को उन्होंने सिद्ध भी किया। कब किया? जब वो वन में थे, वनवास में थे, और तब दुर्योधन वहां पर पहुंचा पकड़ने के लिए युधिष्ठिर महाराज और अन्य पांडवों को, ताकि वहां पहचान ले। और हालांकि अज्ञातवास से पहले की बात है कि जब दुर्योधन वहां पर उस वन में पहुंचा जहां पर वो पांडवों को मार्ग देने वाला था, परंतु दुर्योधन को वहां पर जो गंधर्व लोक के यक्ष आए थे उन्होंने पकड़ लिया और दुर्योधन को बंदी बना लिया और अब लेने के देने पड़ गए दुर्योधन को। और उस समय युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन और भीम को भेजा और अर्जुन और भीम वो लोग युधिष्ठिर महाराज की तरफ देखकर पूछते हैं कि मरने दो उसको। भीमसेन तो इतना था कि मैं दो जाके लगा के देता हूं यदि वो गंधर्व यक्ष ठीक से नहीं मार पाएगा। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि जब हमारे आपस में कुछ बात हो रही है तो ठीक है, हम पांच हैं और वो लोग 100, परंतु यदि कोई दूसरा तीसरा कोई शत्रु आ रहा है तो हम कितने हैं? 105। तो दुर्योधन को युधिष्ठिर महाराज की कृपा से वो उस समय बच पाया। और फिर देखिए दुर्योधन का रवैया कि इतना सब कुछ होने के बावजूद दुर्योधन युधिष्ठिर महाराज को मारने पर उतारू था। तो युधिष्ठिर महाराज इस दृष्टिकोण से अनंत विजयी हर समय रहे, क्योंकि उन्होंने अपनी कृपा से, उन्होंने अपने उदार चरित्र से सबका हृदय जीता। केवल शारीरिक रूप से युधिष्ठिर महाराज नहीं जीतते थे बल्कि वो आंतरिक रूप से सबका हृदय जीत पाते थे। इसलिए यहां पर जब संजय बोल रहे हैं धृतराष्ट्र को कि युधिष्ठिर महाराज ने अनंत विजय ये नामक अपना शंख बजाया, तो इस ध्वनि को सुनकर सभी के हृदयों को वो जीत रहे थे युधिष्ठिर महाराज। और अनंत विजय का एक और अर्थ बताया गया है भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है अनंत। तो युधिष्ठिर महाराज का एक और गुण कि उन्होंने श्री अनंत भगवान श्री कृष्ण के ऊपर विजय प्राप्त कर ली थी। और भगवान श्री कृष्ण इतना ज्यादा विश्वास रखते थे, श्रद्धा रखते थे युधिष्ठिर महाराज के ऊपर कि जब भी कोई निर्णय लेना होता तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से संपर्क करते कि आपका क्या मत है इसके विषय में, और जो भी युधिष्ठिर महाराज अपना मत देते भगवान श्री कृष्ण उसमें हर समय सहमत रहते। इसलिए जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने आते तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के गले लगते, परंतु युधिष्ठिर महाराज के चरण छूते भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज न केवल वो एक दृष्टिकोण से वयस्क थे भगवान श्री कृष्ण से, बल्कि भगवान श्री कृष्ण मानते थे कि युधिष्ठिर महाराज का जो चरित्र है, निष्कलंक चरित्र जो है, इसके कारण ये योग्य पात्र हैं कि ये आदर सत्कार हमारा स्वीकार करें। तो भगवान श्री कृष्ण चरण छूते थे, अपना दंडवत देते थे युधिष्ठिर महाराज को। तो ये एक और अर्थ है अनंत विजय, जो इनके शंख का नाम और युधिष्ठिर महाराज के चरित्र को दर्शा रहा था। और नकुल, इन्होंने अपना शंख बजाया, इनके शंख का नाम सुघोष। सुघोष का अर्थ कोई जानता है? अच्छा, घोष। सुरीली आवाज, सुमधुर या सुंदर, वो सु और घोष, घोषणा या आवाज। तो नकुल, इनके विषय में कहा गया है कि सभी पांडवों में नकुल सबसे ज्यादा सुंदर थे, इसलिए सभी पांडवों के अंदर यह प्रश्न था कि जब हम अज्ञातवास में रहेंगे तो ये नकुल की सुंदरता छिपा नहीं पाएंगे। और विशेष रूप से अर्जुन नकुल से बहुत प्रेम करते थे, ये कारण यह था क्योंकि नकुल श्याम वर्ण के थे, भगवान श्री कृष्ण के वर्ण के, और बहुत सुंदर दिखते थे। इसलिए जब भी अर्जुन नकुल के साथ संग करते तो उन्हें भगवान श्री कृष्ण की याद आती रहती। इसलिए नकुल को बहुत सुंदर बताया गया है, पांडवों में सबसे सुंदर बताया गया था। और बोलने में भी बहुत वो माहिर थे, बहुत सुमधुर वाणी बोलते थे नकुल, और उनकी भुजाएं और उनका सारा व्यक्तिमत्व बहुत ही सुंदर था। और इसलिए जब नकुल ने अपना शंख बजाया तो एकदम सत्वगुण में और सुमधुर, जैसे कि जब भीमसेन जी ने अपना शंख बजाया तो वो महाशंखम पौंड्रम दद्मो, इस प्रकार संजय बता रहे हैं, परंतु जब नकुल इन्होंने अपना शंख बजाया तो सुमधुर वाणी उस शंख से निकली। और कई योद्धाओं को तो ऐसा लगा कि क्या युद्ध शुरू होने वाला है या भगवान की आरती, इतनी सुमधुर वाणी सुघोष नामक इनके शंख से निकली नकुल के। और अज्ञातवास में नकुल और सारे पांडव किनके राज्य में रुके थे? वो महाराज विराट के राज्य में। तो यदि आपको याद होगा तो नकुल क्या बने थे, नकुल कैसे अपने आप को छिपाए थे, किसी को याद है? हाँ, नकुल ने महाराज विराट को कहा कि मैं युधिष्ठिर महाराज के राज्य में घोड़ों की देखरेख की सेवा करता हूं, और मेरा नाम है, क्या नाम बताया उन्होंने? ग्रांथिक। नकुल का नाम ग्रांथिक उन्होंने बताया महाराज विराट को। और महाराज विराट केवल नकुल को देखने मात्र से, और कोई उनका सर्टिफिकेट देखा नहीं कि सर्टिफिकेट दिखाओ कौन सी यूनिवर्सिटी का है तुम्हारे, कि तुम घोड़ों की देखरेख ठीक से कर सकते हो कि नहीं। केवल नकुल की सुंदरता को और उनकी मधुर वाणी को सुनते ही महाराज विराट ने ये दे दिया डिपार्टमेंट, घोड़ों का डिपार्टमेंट नकुल को। तो नकुल ने जो अपना शंख बजाया इसके विषय में बताया गया है कि बहुत सुरीली आवाज निकली इनके शंख से, और सहदेव इनके शंख का नाम बताया गया है मणि पुष्पक। इसका क्या अर्थ है आने वाला है, रुक जाइए। मणि एवं पुष्प के समान सुंदर ये सहदेव इनका शंख था, और सहदेव इनके विषय में बताया गया है कि वेदों में पारंगत सहदेव थे, और जब भी पांडवों में कुछ वाद विवाद होता या कोई डिस्कशन होता तो उसमें यदि वैदिक ग्रंथों के संदर्भ में कुछ कहा जाना होता तो सबसे पहले सहदेव से पूछते, सहदेव बताओ कौन से वैदिक ग्रंथ में क्या लिखा है इसके बारे में, तो सहदेव पूरा जानते, पूरा एनसाइक्लोपीडिया थे वो, सब बता देते ठीक से। और इसलिए जब राजसूय यज्ञ महाराज युधिष्ठिर करवा रहे थे और उस राजसूय यज्ञ में यह प्रश्न था कि अग्र पूजा किसकी होनी चाहिए, तो अग्र पूजा के लिए भगवान श्री कृष्ण इनको जब नियुक्त किया गया तो कौन था भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही प्रिय मित्र जो आकर भगवान श्री कृष्ण को बधाई देने आया था, शिशुपाल। तो शिशुपाल आकर जब वो गाली देना शुरू किया तो बाकी सब असमंजस में पड़ गए और सोच रहे थे कि अब क्या करना चाहिए। भीमसेन तो वो तो तुरंत खड़े हो चुके थे कि जैसे ही शिशुपाल ने शुरू किया गाली देना तो भीमसेन तो वहीं पर उसकी कब्र बनाने वाले थे, परंतु भीष्म पितामह उन्होंने रोक दिया, क्योंकि भीष्म पितामह जानते थे कि इसे क्या वरदान मिला हुआ है, और इसलिए भीष्म पितामह प्रतीक्षा में थे कि इसे बोल लेने दो, सेंचुरी मारने दो इसे, क्योंकि उसके पश्चात इसे मेडल भगवान स्वयं देने वाले हैं अपने हाथों से। तो इसलिए भीष्मदेव इन्होंने इनको रोक दिया भीमसेन को, परंतु सहदेव इनको सहन नहीं हुआ और ये खड़े होकर बोले कि जो भी भगवान श्री कृष्ण के विरुद्ध कुछ बोलता है उसे मेरी लात पड़ेगी। और जैसे ही सहदेव जी ने ये वाक्य कहे तो उस पूरे महल में देवता उपस्थित हो गए ऊपर आकाश में, और देवता उपस्थित हो गए और वहां से वो पुष्पों की बरसात करने लगे, मणियों की और पुष्पों की बरसात करने लगे, जिसके वजह से इनके शंख का नाम पड़ा मणि पुष्प का। क्योंकि सारे देवी देवता इतने प्रसन्न हुए कि सहदेव जी जो भी कुछ कहते हैं वो शास्त्र पर ही आधारित करते, तो फिर सहदेव जी यदि ये भी कहें कि मेरी लात पड़ेगी तो वो भी शास्त्र पर आधारित है, तो इसलिए इनके ऊपर मणियों की और पुष्पों की वर्षा हुई, तो इसलिए इनके शंख का नाम मणि पुष्पक बताया गया। और इसके पश्चात संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि जो आगे वाले योद्धा उन्होंने जो अपना शंख बजाया इनका नाम था काशीराज, परंतु काशीराज इनके विषय में वो कहते हैं उनके शंख का नाम नहीं बता रहे परंतु इनके विषय में बता रहे हैं परमेश्वास, कि वो परमेश्वास क्यों थे, क्योंकि इस शब्द को यदि आप विभाजित करो तो तीन भाग में इसका विभाजन होता है, परम और ईशु और आसन। तो परम का अर्थ है महान, ईशु का अर्थ है बाण, और आस का अर्थ है आसन। तो यहां पर वो बता रहे हैं कि काशीराज ये ऐसे राजा थे, ऐसे योद्धा थे कि जिनका धनुष इतना महान था। ये धनुष के विषय में बता रहे हैं कि केवल धनुष के विषय में बता रहे हैं, बोल रहे हैं जैसे कि बाण का आसन क्या होता है धनुष। तो यहां पर हालांकि धनुष शब्द को इस्तेमाल भी नहीं किया गया परंतु केवल इतना बताया गया है कि बाण का महान जो आसन है वो लिए हुए महाराज काशीराज। और ये यहां पर उपस्थित है। और महाराज काशीराज, इनके विषय में बताया गया है कि इनकी वो तीन पुत्रियां थी, अंबा, अंबिका और अंबालिका, उसकी उसके बारे में भी हम बताएंगे। परंतु महाराज काशीराज के विषय में बताया गया है कि महाराज काशीराज वो इतने ज्यादा भगवान के शुद्ध भक्त थे कि जब युद्ध भूमि में कौन कौन उपस्थित रहेगा, सामने कौन से पंक्ति में, तो सबसे आगे वाली पंक्ति में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि महाराज काशीराज को खड़ा किया जाए। इसलिए महाराज काशीराज का नाम पांडवों के ठीक बाद लिया जा रहा है, क्योंकि यह ध्यान में रखना होगा कि संजय अपनी आंखों से देख रहे हैं, तो संजय अपनी आंखों से देख रहे हैं कि कौन कौन कहां कहां खड़े हैं और वो क्या क्या कर रहे हैं। तो इसलिए जैसे ही भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीमसेन, फिर नकुल, सहदेव, इनके विषय में बताने के पश्चात अब काशीराज इनके बारे में बता रहे हैं, और इनके बारे में विशेष रूप से बता रहे हैं कि ये प्रसिद्ध हैं इनके महान धनुष के कारण, और इसे लिए हुए ये खड़े हैं, और इन्होंने भी अपना शंख बजाया। और तत्पश्चात फिर इन सब योद्धाओं के नाम एक एक कर ले रहे हैं, शिखंडी, दृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी, द्रुपद। अब शिखंडी के विषय में बताया गया है कि बहुत ही रोचक कथा है शिखंडी की, कि जब भीष्म पितामह इन्होंने काशीराज के तीन पुत्रियों का अपहरण किया, तो उसमें से अंबा, ये जो पुत्री थी काशीराज की, ये पुत्री जब भीष्मदेव इनको लेकर आए, तो अंबा ने भीष्मदेव से कहा कि देखो, मैं पहले से किसी और से प्रेम करती हूं। उस समय भी सब लव स्टोरी चलती थी, किसी और को हमने हमारा दिल दे दिया है, और वो भी भीष्म पितामह जैसे आजीवन ब्रह्मचर्य को वो बोल रही थी। तो उन्होंने पूछा, बोलो बोलो कौन है वो। ऐसे नहीं पूछा होगा, परंतु केवल इतना पूछा कि बताओ कौन है वो। तो फिर वो कहती हैं शाल्व, कि शाल्व के साथ इनका प्रेम था। तो भीष्म पितामह ने कहा ठीक है, वापस जा सकती, तो छोड़ दिया भीष्म पितामह ने अंबा को। परंतु अंबा जब शाल्व के पास गई, तो शाल्व कहता कि हो गया, अब तो बस खत्म, ये सब खत्म, यहां पर लव स्टोरी हमारा। तो उसने पूछा क्यों खत्म, क्योंकि तुम्हें भीष्म ने स्पर्श कर लिया, तो अब मैं स्वीकार नहीं कर सकता। देखो स्टैंडर्ड उस समय का, तो अब मैं स्वीकार नहीं कर सकता। तो अंबा फिर से अब भीष्म पितामह के पास आती है, तो भीष्म पितामह के पास आती है और बोलती है कि अब यह स्थिति है कि आपके अलावा और कोई मुझसे विवाह नहीं कर सकता। तो भीष्म पितामह, अरे भाई ये क्या है, तो ये तो उल्टा मेरे ऊपर ही वार हो रहा है। तो भीष्म पितामह ने कहा कि नहीं नहीं भाई, मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का वो व्रत लिया है, वो भी भीषण, इसलिए मुझे नाम भी मिला है भीष्म। तो फिर जब अंबा को ऐसे छोड़ दिया, तो अंबा इतनी क्रोधित हुई भीष्म पितामह के ऊपर कि अंबा ने फिर ये प्रण लिया कि मैं इस भीष्म के मृत्यु का कारण बनूंगी। और फिर अंबा ने तपस्या की, और तपस्या करने के पश्चात एक यक्ष से उन्हें वरदान मिला, और फिर वो पैदा हुई किसकी पुत्री बनकर, किसे पता है, महाराज द्रुपद की पुत्री बनकर आई फिर वो, और महाराज द्रुपद की वो पत्नी बनी, और फिर उसी यक्ष के वरदान के वजह से वो एक स्त्री से पुरुष में परिणित हुई। सोचिए टेक्नोलॉजी उस समय का भी, कि वो उस वरदान की वजह से वो स्त्री से पुरुष में परिणित हुई, और फिर नाम हुआ शिखंडी। और भीष्म पितामह सब जानते थे पूरा हिस्ट्री जानते थे, पिछले जन्म का भी सब कुछ जानते थे, इसलिए भीष्म पितामह वो बोल दिए थे, वो अर्जुन को बोल दिए थे कि यदि मुझे मारना है तुम्हें अर्जुन तो उस शिखंडी को लेकर आओ, क्योंकि उस शिखंडी ने ये उसे वरदान मिला हुआ है और उस शिखंडी ने ये व्रत लिया हुआ है, इसलिए वो शिखंडी। तो फिर अर्जुन ने पूछा, तो आपके अंदर तो पूरी शक्ति है, तो आप शिखंडी को क्यों नहीं मार पाते? तो भीष्म पितामह ने कहा, क्योंकि ये शिखंडी केवल पिछले जन्म में नहीं, इस जन्म में भी एक स्त्री थी, स्त्री था थी पता नहीं, जो भी कुछ जैसे कहें आप। तो इसलिए भीष्म पितामह ने कहा, क्योंकि मैं इसे उस तरीके से जानता हूं, इसलिए मैं प्रहार इसके ऊपर नहीं कर सकता। एक क्षत्रिय होने के नाते, एक ब्रह्मचारी होने के नाते मैं इसके ऊपर प्रहार नहीं कर सकता। तो इसलिए शिखंडी फिर कारण बना भीष्म पितामह के वध का। तो ये शिखंडी के विषय में संजय कहते हैं धृतराष्ट्र को, महारथी, यदि आप श्लोक में पढ़ोगे तो शिखंडी से पहले महारथी कहा गया कि महारथी शिखंडी। तो धृतराष्ट्र मानो आश्चर्य करें कि ये शिखंडी ना तो यहां ना तो वहां, इसको महारथी क्यों कहा गया? क्योंकि एक ऐसे अतिरथी के वध का कारण ये शिखंडी बनने वाला है, इसलिए इसलिए यहां पर संजय वो संकेत दे रहे हैं धृतराष्ट्र को कि उन भीष्म पितामह के वजह से तुम्हारा पुत्र और तुम्हारे सारे पुत्र और पूरी कुरु सेना एकत्रित हुई है, परंतु वो भीष्म पितामह के वध का कारण ये शिखंडी ये होने वाला है। तो इसलिए महारथी शिखंडी कहा गया है। और फिर आगे दृष्टद्युम्न, तो अब दृष्टद्युम्न और शिखंडी का क्या रिश्ता हुआ? भाई हुए। हालांकि दृष्टद्युम्न वो पैदा हुए यज्ञ कुंड से, वो किसी माता के गर्भ से पैदा ना हुई दृष्टद्युम्न, वो केवल यज्ञ कुंड से पैदा हुए दृष्टद्युम्न, परंतु फिर भी द्रुपद के पुत्र कहे गए हैं, और इसलिए वो उस दृष्टिकोण से शिखंडी के भाई हुए। और दृष्टद्युम्न के बारे में तो हम सब जानते हैं कि वो पैदा होते ही उन्हें जो वरदान, जिसके वजह से वो पैदा हुए, जिसके कारण वो पैदा हुए, उसे सिद्ध किया उन्होंने, और द्रोणाचार्य के वध के लिए, और आशीर्वाद द्रोणाचार्य से ले लिया, यशस्वी भव, किस लिए? आपको मारने। तो ये दृष्टद्युम्न। और महाराज विराट, महाराज विराट को जब पता लगा कि मेरे राज्य में एक साल तक ये सारे पांडव मेरे सेवक बनकर रहे, तो महाराज विराट वो कांपने लगे जब उन्हें पता लगा कि सैरंद्री द्रौपदी वो मेरी रानी की दासी बनी हुई थी। और क्योंकि द्रौपदी का जो चरित्र था वो सभी डरते थे द्रौपदी से, क्योंकि जो द्रौपदी के साथ हुआ उसके पश्चात जो जो व्रत लिया गया सभी ने, भीम ने और सभी बाकी पांडवों ने, तो महाराज विराट थोड़ा डर गए जब उन्हें पता लगा कि मेरी रानी की दासी बनी द्रौपदी। और युधिष्ठिर महाराज वो चौसर खेलते थे इनके साथ, क्योंकि महाराज विराट को चौसर खेलना बहुत पसंद था, और युधिष्ठिर महाराज को तो अभी अज्ञातवास वगैरह ये सब मिला किस लिए था? वो चौसर खेलने की वजह से, तो थोड़ा अच्छा प्रैक्टिस भी था। और फिर जब महाराज विराट को पता लगा कि मेरा निजी रसोईया भीम, तो महाराज विराट और फिर अर्जुन के विषय में कि अर्जुन वो मेरी पुत्री के डांस टीचर बने, ये सब कुछ सुनने के पश्चात, और अपने सहदेव ये एक ग्वाला बने और अश्वों की रक्षा करने के लिए नकुल, और ये सब सुनने के बाद महाराज विराट, इनके मन में इतनी कृतज्ञता की भावना हुई कि इन्होंने कहा कि चाहे आप किसी से भी लड़ो मुझे अवश्य लेना, और चाहे मैं किसी को भी ना मार पाऊं परंतु फिर भी मुझे ये कुछ तो आपके प्रति रिपेमेंट करना है, भरपाई करनी है आपकी। इसलिए महाराज विराट, हालांकि वो भी बहुत बड़े योद्धा थे, तो महाराज विराट वहां पर उन्होंने अपना शंख बजाया। और सात्यकी, सात्यकी के विषय में बताया गया है कि भगवान की नारायणी सेना के बहुत ही प्रमुख, एक यदुवंशी थे सात्यकी, और ये भगवान श्री कृष्ण के बहुत ही निकट के एक योद्धा थे। और सात्यकी सबसे इतना प्रेम किया करते थे कि सारे पांडव, यहां तक कि दुर्योधन इत्यादि भी, वो जानते थे कि सात्यकी ये इतने ईमानदार व्यक्ति हैं कि ये जो कुछ करेंगे ईमानदारी से करेंगे। इसलिए सात्यकी को देखकर दुर्योधन ज्यादा भयभीत हो रहा था, क्योंकि सात्यकी का पराक्रम ही नहीं बल्कि सात्यकी का चरित्र भी बहुत ही निर्मल और निष्कलंक था। और फिर महाराज द्रुपद, तो भाई जहां पर उनके सारे दामाद खड़े हुए हैं तो ससुर जी तो आएंगे। तो महाराज द्रुपद, जब इन्हें सब पता लगा कि मेरी ही पुत्री के साथ इन कौरवों ने क्या क्या नहीं किया, तो महाराज द्रुपद आग में ना खोल रहे थे, उनका सब कुछ क्रोध आग के समान भभक रहा था। और इसलिए महाराज द्रुपद ने भी प्रण लिया, और इसलिए महाराज द्रुपद भी जब अपना शंख नाद कर रहे थे तो संजय धृतराष्ट्र को इन सब योद्धाओं की सूची देते हुए धृतराष्ट्र को संकेत दे रहे हैं कि ये एक एक काफी हैं तुम्हारे इन पुत्रों को मारने के लिए। तो सोचिए कि इनके पीछे जो इनकी सेना है, और सोचिए जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनके विषय में फिर क्या कहना। अब इसके पश्चात संजय धृतराष्ट्र को द्रौपदी के 5 पुत्रों के विषय में बता रहे हैं। अब इन सब के विषय में तो हमने अक्सर सुना है, सात्यकी, फिर महाराज विराट और द्रुपद। कोई जानता है द्रौपदी के 5 पुत्रों का क्या नाम था? यहां पर एक एक कर उनके नाम सामने आएंगे। तो युधिष्ठिर महाराज के द्वारा द्रौपदी ने प्रतिविंध्य नामक पुत्र की उत्पत्ति की, और ये प्रतिविंध्य, इनको ये नाम दिया गया क्योंकि विंध्याचल पर्वत, आप यदि सुने होंगे, पर्वत का नाम है विंध्य। तो ये इतने अचल अपने युद्ध कौशल में कि यदि कोई शत्रु सामने आ जाए तो ये विंध्य पर्वत के समान अचल रहते, इसलिए इनको ये नाम मिला प्रतिविंध्य। और भीमसेन जी, इनके द्वारा द्रौपदी ने सूत सोम नामक पुत्र की उत्पत्ति की, क्योंकि ये इस पुत्र की उत्पत्ति से पहले भीमसेन जी ने सोम याग किया था, और वो भी 1000 सोम याग किया था, जिसके वजह से ये पुत्र, जो कि सूर्य और चंद्र की तरह तेजस्वी, ये पुत्र उत्पन्न हुआ, इसलिए इनका नाम हुआ सूत सोम। और अर्जुन, अर्जुन ने श्रुत कर्म नामक पुत्र की उत्पत्ति की, क्योंकि अर्जुन ने इनकी उत्पत्ति की जब ये बहुत बड़ा भारी कर्म पराक्रम कर आ रहे थे, सारे अस्त्र शस्त्रों को यहां वहां से देवलोक से लेकर आ रहे थे, तब इनकी उत्पत्ति हुई, इसलिए इनका नाम है श्रुत कर्म। और नकुल और सहदेव, इनके पुत्रों का नाम बताया गया है शतानिक, कि ये कई हजारों और शत योद्धाओं के साथ एक साथ युद्ध कर सकते थे, और श्रुतसेन, जो कि बहुत ही श्रुतिधर थे। तो इसलिए इन 5 पुत्रों के विषय में ज्यादा सुनने को नहीं आता, क्योंकि इन 5 पुत्रों, द्रौपदी के इन 5 पुत्रों की हत्या किसने की? अश्वत्थामा ने, और बहुत ही नृशंस तरीके से और कायरता से। जब ये सो रहे थे मध्य रात्रि के समय, अश्वत्थामा ने इनकी, यहां तक कि अश्वत्थामा, हालांकि अश्वत्थामा वो 5 पांडवों की हत्या करने के लिए निकला था, और अश्वत्थामा फिर जान गया था कि उसने गलती से 5 पुत्रों की हत्या कर दी है पांडवों के, और अश्वत्थामा सोचा कि इससे दुर्योधन और प्रसन्न होगा कि जो आगे वाली पीढ़ी है उसे ही खत्म कर दिया। तो हो सकता है कि दुर्योधन ये सोचे कि पांडवों के जीने के तो कितने वर्ष बाकी हैं, परंतु इसके पश्चात जो वंशज है पांडवों के, वो वंशज यदि खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उनके ज्यादा जीने के हैं वर्ष, तो यदि वो भी खत्म हो जाएंगे तो पांडवों से संबंधित कोई भी राज्य हस्तिनापुर का नहीं ले पाएगा। इसलिए अश्वत्थामा ने सोचा कि यदि इनके कटे सर में ले जाकर दुर्योधन के सामने रखता हूं तो दुर्योधन बहुत प्रसन्न होगा। दुर्योधन तब तक मरा नहीं था, वो घायल रणभूमि में पड़ा हुआ था। तो तब अश्वत्थामा ये द्रौपदी के पांच पुत्रों के सर कटे हुए लेकर जाता है और दुर्योधन वो देख भी नहीं पाता, और अश्वत्थामा कहता है कि ये देखो पांच सर मैं लेकर आया हूं। तो दुर्योधन अपने हथेली से उन पांच सरों को उनमें से दबाने की कोशिश करता है, वो देखने के लिए कि क्या ये सर पांडवों के हैं या और किसी के हैं। क्योंकि दुर्योधन देखिए इतना ज्यादा वाकिफ था पांडवों से कि वो केवल स्पर्श करने मात्र से पहचान लेता कि ये सर भीम का है, ये सर अर्जुन का है, ये सर युधिष्ठिर का है। परंतु जैसे ही दुर्योधन ने अपनी हथेली से इन सरों को दबाया तो दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा, क्या जो वंशज जो थोड़े बहुत बचे हुए थे द्रौपदी के पांच पुत्र उनको मार डाला तुमने, ये कैसा भारी पाप तुमने किया अश्वत्थामा। कौन कह रहा है? दुर्योधन। कि अश्वत्थामा ने जो कार्य किया वो इतना गिरा हुआ कार्य था कि दुर्योधन भी उसकी भर्त्सना कर रहा था। ये दुर्योधन ने कह दिया ये क्या किया अश्वत्थामा तुमने, और अश्वत्थामा आश्चर्यचकित हो गया कि दुर्योधन को समझ में कैसे आ गया कि ये द्रौपदी के पांच पुत्र हैं केवल स्पर्श करने मात्र से। क्योंकि दुर्योधन ने जैसे ही स्पर्श किया तो दुर्योधन ने कहा कि ये किसी बालक के सर लगते हैं, ये अर्जुन भीम जैसे बड़े बड़े योद्धाओं के सर नहीं लगते। और उसी से परख लिया दुर्योधन ने कि अश्वत्थामा ने क्या किया। तो यहां पर संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि ये पांच पुत्र द्रौपदी के ये भी वहां पर उपस्थित थे, और फिर अंतिम योद्धा इसके विषय में अब संजय बताते हैं कि जिनके वजह से आगे चलकर जो पांडवों का वंश है वो आगे चलकर राज्य कर सका, और ये अंतिम योद्धा थे अभिमन्यु। और अभिमन्यु के विषय में बताया गया है कि इनके नाम का अर्थ है, अभि का अर्थ है निर्भयता और मन्यु का अर्थ है क्रोध। तो सोचिए क्षत्रियों के नाम भी किस प्रकार से हुआ करते थे, अभिमन्यु, कि जो शत्रु के साथ जब युद्ध करे तो निर्भयता से और पूर्ण क्रोध से। कि क्षत्रिय केवल इनके भुजाओं में केवल बल नहीं हुआ करता था, क्षत्रिय जब अपने वाणी से चिंघाड़ते थे युद्ध भूमि पर, अंग्रेजी में जिसे वॉर क्राइज कहते हैं, तो भीमसेन उन्होंने सैकड़ों सैनिकों को ऐसे ही धराशायी कर दिया, उन्हें कोई अपनी गदा उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। महाभारत में वर्णन है कि भीमसेन ऐसे ऐसे सैकड़ों सैनिक खड़े हैं और वो सैकड़ों सैनिक अपने अस्त्र शस्त्र लेकर भीमसेन की तरफ भागते हुए आ रहे हैं, तो भीमसेन ने जोर से चिल्लाया और जोर से चिल्लाने मात्र से वो सारे सैनिक मलमूत्र त्याग दिए वहीं पर, और वहीं पे उनका हार्ट अटैक आकर खत्म। केवल उनकी गर्जना सुनने मात्र से। तो इसलिए यहां पर अभिमन्यु के विषय में बताया गया है, जब संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि ये इन्होंने अपना शंख बजाया अभिमन्यु ने, और ये प्रश्न पूछा गया है कि वैदिक ग्रंथों के अनुसार शंख ध्वनि जब भी हुई है शंख ध्वनि पूजा से पहले ही हुई है। जब भी कोई यज्ञ या पूजा अनुष्ठान या भगवान की आरती जैसे कि मंदिर में भगवान की आरती से पहले शंख बजाया जाता है। हमें याद है जब बचपन से तो पता नहीं था कि आरती से पहले शंख बजाया जाता है, और जब हम पहली बार इस्कॉन मंदिर में आए हमारे किसी मित्र के साथ, तो वहां पर शंख वो ऑल्टर के अंदर, मतलब जब पर्दा बंद था तो पता नहीं लगा कि पुजारी अंदर शंख बजा रहे हैं। कई बार पुजारी बाहर आकर शंख बजाते, परंतु कई ऑल्टर हैं जहां पर बाहर आने की कोई सुविधा नहीं होती तो वो अंदर ही शंख बजाते हैं। तो ये एक मित्र, इसने जब शंख की आवाज सुनी तो कहा कि अरे ट्रेन का हॉर्न यहां तक सुनाई देता है। अब सोचिए, शंख की आवाज, उसे भगवान की याद आनी चाहिए तो ट्रेन का हॉर्न याद आ रहा है, वो बंबई के लोकल ट्रेन का हॉर्न। तो शंख ध्वनि जब भी बजती है तो शंख ध्वनि के बाद पूजा प्रारंभ होती है। तो यदि यहां पर यह प्रश्न पूछा जाए कि यहां भाई कौन सी पूजा होने वाली है, कौन अगरबत्ती आरती लेकर किसकी पूजा कौन करने वाला है, तो ये शंख ध्वनि युद्ध भूमि में इसका क्या मायना है, क्या महत्व है? तो यदि शंख ध्वनि पूजा से पहले होती है तो फिर युद्ध यहां पर क्या हुआ? युद्ध की तुलना फिर पूजा से की जाएगी, और यदि युद्ध की तुलना पूजा से की गई है तो युद्ध भूमि यज्ञ कुंड बन जाता है, और यदि युद्ध भूमि यज्ञ कुंड बन जाता है तो जो योद्धा हैं इनकी आहुति, जैसे कि अलग अलग पदार्थों की आहुति यज्ञ में, यज्ञ कुंड में दी जाती है, घी और अन्य इत्यादि, फल इत्यादि, तो यहां पर आहुति किसकी दी जाएगी? सब योद्धाओं की आहुति दी जाएगी, और जो अस्त्र शस्त्र हैं वो यज्ञ की सामग्री हैं। इसलिए अर्जुन के विषय में बताया गया है कि अर्जुन सबसे ज्यादा आहुति दे रहे थे, क्योंकि जैसे वो आहुति देने के लिए वो जो चम्मच होता है, तो अर्जुन का जो यंत्र था वो सबसे बड़ा था, इसलिए सबसे ज्यादा आहुति अर्जुन के द्वारा दी जा रही थी इस कुरुक्षेत्र के यज्ञ कुंड में। तो अब यदि शंख ध्वनि इस युद्ध की पूजा से पहले हुई है, और यदि युद्ध भूमि यज्ञ कुंड के समान है, योद्धा आहुति के समान है, अस्त्र शस्त्र यज्ञ की सामग्री, तो फिर क्या बाकी रह गया? प्रसाद। पंद्रह बीस मिनट बाद होगा। पंडित वो तो है ना, अर्जुन कर रहे हैं ना, आहुति दे रहे हैं, वो कर रहे हैं। यज्ञेश्वर कौन है, किसके लिए यज्ञ किया जा रहा है, वो सबसे महत्वपूर्ण है कि भाई यज्ञ कुंड हो गया और पुरोहित आ गया और माता पिता आ गए, परंतु शादी किसकी हो रही है ये किसी को पता नहीं। तो इसलिए यहां पर यह जानना आवश्यक है कि यज्ञेश्वर कौन है, यज्ञ के ईश्वर कौन है, जिसके लिए इतना बड़ा यज्ञ कुंड, जिसके अंदर 64 करोड़ आहुतियां और इतने सारे अस्त्र शस्त्र और इतने सारे ऋत्विक और इतने सारे पुरोहित ये एकत्रित हुए हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो यज्ञेश्वर हैं इनकी ये इच्छा। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि यदि यहां पर जो इतना खून खराबा मारकाट हो रही है इसको पूजा कहा गया है, सोचिए इसे पूजा कहा गया है, तो यदि इसे पूजा कहा गया है तो तो इसका अर्थ है कि जो भी हम कार्य करें यज्ञेश्वर के लिए, चाहे वो किसी को मारने का भी कार्य हो, हम ये नहीं बोल रहे, परंतु यदि उस थर का भी कार्य हो, परंतु यदि वो यज्ञेश्वर के लिए किया जा रहा हो, तो उस कार्य को पूजा कहा जा सकता है। इसलिए भगवद गीता के तीसरे अध्याय में ये प्रसिद्ध श्लोक आता है, यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर, कि सारे यज्ञों के ईश्वर हैं भगवान श्री कृष्ण, और सारे यज्ञों का अर्थ है कि इन यज्ञेश्वर को प्रसन्न करना, और यदि जो भी कर्म किया जाए, परंतु यदि इन यज्ञेश्वर को प्रसन्न करने के लिए नहीं किया जा रहा, तो वो कर्म बंधन में बांधता है। इसलिए जब ये देखा जाता है कि कई बार लोग बहुत सात्विक होते हैं बाहरी दृष्टिकोण से, कोई कुकर्म नहीं करते और कभी झूठ नहीं बोलते, कभी किसी को धोखा नहीं दिया, ये सब कुछ उनके जीवन में कुछ नहीं, परंतु यदि उनका कर्म यज्ञेश्वर को प्रसन्न करने के लिए नहीं है, तो वो भी बांधने वाला है, वो तथा कथित उनका सत्कर्म भी उन्हें बांधता है। और यहां पर अर्जुन एक एक कर इतने योद्धाओं को मार रहे हैं, परंतु एक एक बाण जो अर्जुन के धनुष से निकल रहा है, वो अर्जुन के कर्म चक्र को काट रहा है। क्यों? क्योंकि वो यज्ञेश्वर की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। इसलिए ये जो लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है, तो वो कौन सा कर्म पूजनीय कर्म हो सकता है, जब ये सारी बातें, ये सारे मुद्दे ठीक ठीक बैठ रहे हो तब। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा कौन सा, कि यदि यज्ञेश्वर नहीं तो यज्ञ की सामग्री का क्या अर्थ, और आहुति यज्ञ कुंड और कौन सी पूजा फिर। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण हमारे जीवन में यह देखना चाहिए कि मैं जो कुछ कर रहा हूं क्या वो पूजनीय कर्म है या नहीं, और पूजनीय कर्म तभी होगा जब भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं। इसलिए यहां पर शंख ध्वनि ये संकेत दे रही है कि अब पूजा प्रारंभ होने वाली है। सोचिए कि यदि कोई कहे कि कुरुक्षेत्र की रणभूमि में शंख ध्वनि के बाद अब पूजा प्रारंभ होने वाली है, आइए सभी पूजा में भाग लीजिए। और पूजा कौन सी है, अब यहां पर गदा चलेंगे, और यहां पर बाण चलने वाले हैं, भाले चलने वाले हैं, हाथी घोड़े इन सब के साथ, कोई जश्न नहीं मनने वाला, हाथी घोड़ा पाल की ये सब कुछ नहीं, लेकिन वहां पर युद्ध, और वो भी बहुत ही भयावह युद्ध होने वाला है। ऐसा युद्ध वहां पर छिड़ा था कि खून की नदियां बही थी, नदियां, और उन खून की नदियों में कटे हुए हाथ, कटे हुए शरीर, सर, ये सब बह रहे थे उस नदियों में। और इसे कहा गया है पूजा, ये पूजनीय कर्म, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के धर्म की स्थापना के लिए ये किया जा रहा है। इसलिए ये आप समझ लीजिए, कृष्ण कॉन्शियसनेस इज द मोस्ट रेवोल्यूशनरी प्रोसेस, सबसे ज्यादा क्रांतिकारी कोई विधि यदि आध्यात्मिक विधि है तो वो है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। क्योंकि बाहरी रूप से कोई समझ नहीं पाएगा, इसलिए हमारे भारत के बहुत बड़े नेता एक समय के, उन्होंने भगवद गीता के विषय में कहा कि यदि भगवद गीता के वजह से इतनी बड़ी हिंसा हुई तो मैं उन भगवान कृष्ण को नहीं मानता। ये हमारे भारत के बहुत बड़े नेता का कथन, क्योंकि वो चाहते थे कि शांति हो, अहिंसा स्थापित हो, परंतु ये नहीं जानते कि कृष्ण भक्ति जो है ये हिंसा और अहिंसा के परे, अहिंसा ज्यादा से ज्यादा क्या स्थापित कर सकती है, थोड़ी शांति। या अक्सर लोग कहते हैं कि हमें इस संसार में स्मशान शांति चाहिए, कभी सुना आपने स्मशान शांति? हां, स्मशान शांति तो सभी एक ना एक दिन तो मरने ही वाले हैं, और जो आत्म साक्षात्कार नहीं किया है तो पहले से मरा हुआ है, इस शरीर मरा हुआ है, केवल चेतना के वजह से ये यहां वहां घूम रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति जो है वो हिंसा और अहिंसा दोनों के परे है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि तुम मार नहीं रहे इन्हें, इन्हें तो मैंने पहले ही खत्म कर दिया है। देख लो ट्रेलर विश्वरूप का, इनको तो मैंने पहले खत्म कर दिया है। तुम केवल मेरे यंत्र बनो धर्म की स्थापना करने के लिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति वो अहिंसा और हिंसा के परे शुद्ध प्रेमा भक्ति स्थापित करने के लिए की जाती है। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया है तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो। विप्लव का अर्थ है रेवल्यूशन। श्रीमद् भागवत इज देयर टू क्रिएट अ रेवल्यूशन अमंगस्ट द ह्यूमन सोसाइटी। श्रील प्रभुपाद इसका अनुवाद करते हैं कि श्रीमद् भागवत में जो भक्ति का सिद्धांत दिया गया है वो साधारण एक सत्वगुणी व्यक्ति कभी नहीं समझ पाएगा। एक व्यक्ति जो केवल पुण्य में लगा हुआ है, पाप जो कर रहा है वो तो कभी नहीं समझ पाएगा, परंतु जो पुण्य में भी लगा हुआ है वो भी कभी समझ नहीं पाएगा कि ये भगवान श्री कृष्ण को कैसे पाया जाता है। और ये है यहां पर शंख नाद का संकेत कि अब ये पूजनीय कर्म शुरू होने वाला है। अब संजय आगे बताते हैं कि ये जो पूरा शंखनाद था, इतने 18 योद्धा और कुरु सेना के भी एक एक कर ये बजाए, एक एक कर अपना अपना शंख। इसलिए संजय को ठीक ठीक पता लग रहा है कि कौन कौन सा शंख बजा रहा है और उसकी ध्वनि किस प्रकार की है। ऐसा नहीं कि सभी एक साथ शुरू हो गए, एक एक कर सभी बजा रहे थे। इसलिए संजय कहते हैं कि ये जो शंखनाद सर्वशह, ये शब्द इस्तेमाल किया गया है। और सर्वशह का अर्थ क्या है? एक है पूर्ण रूप से और सर्वशह का अर्थ है सभी ओर से, कि सभी ओर से ये शंखनाद सुनाई दे रहा था और पूर्ण रूप से सभी बजा रहे थे। ऐसा नहीं कि कोई किसी का हाथ कांप रहा था कि अभी इसके बाद तो बाप रे, इसके बाद तो सब तीर चलने वाले हैं, तो किसी का हाथ कांप नहीं रहा था शंख बजाते समय। सभी जोर से पूर्ण रूपेण शंख बजा रहे थे। जैसे कई बार हम देखते हैं कभी पुजारी उन्हें शंख बजाना जमता नहीं तो वो शंख के बजाय कभी कोई पिंपड़ी की आवाज निकलती है या कोई सिट्टी निकलती है खाली केवल। परंतु यहां पर पूर्ण रूपेण सभी लोग अपना शंख बजा रहे, इसका कारण दिया गया है। क्यों क्यों सभी लोग पूरे उत्साह से शंख बजा रहे थे? क्योंकि सबसे पहला शंख बजा भगवान का। सबसे पहला पांचजन्यम ऋषिकेश हो, जब भगवान श्री ऋषिकेश का सबसे पहला शंख बजा तो बाकी सब अब पूर्ण प्रकार से निडर हो गए कि अब जब हमारे जो सेनापति हैं, जो हमारे सब प्रकार से पति हैं, यज्ञपति सेनापति धियामपति सब जो हमारे पति हैं, इन्होंने अपना शंख नाद कर दिया है तो अब डर किस बात का? तो किसी को कोई प्रकार का डर नहीं था, इसलिए निडर अभयता से। और आगे आगे वाला श्लोक जो हम अगले हफ्ते लेंगे उसमें बताया गया है कि कौन डरे और कौन निडर तरीके से शंख बजा रहे थे, क्योंकि इनके पक्ष में भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले अपना शंख बजाया। इसलिए बाकी सब इतने उत्साही हो गए अपना शंख बजाने के लिए कि वो इतनी जोर से अपना शंख बजाने लगे कि संजय उस उत्साह से धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, धृतराष्ट्र देखो तुम सुनो, देख तो नहीं सकते सुनो, कि केवल सुनने मात्र से तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारे बेटे का क्या होने वाला है वहां पर। ये तो शुरुआत है, केवल शंखनाद हुआ है, छिंदी छिंदी करने वाले हैं तुम्हारे बेटे को ये लोग। तो ये पूर्ण रूपेण सर्वशः ये शब्द इसलिए इस्तेमाल किया गया। और सर्वप्रथम शंखनाद भगवान श्री कृष्ण का हुआ, इसकी तुलना की गई है जैसे रेलगाड़ी का जो इंजन होता है वो हॉर्न बजाता है ना, और वो जब रेलगाड़ी का इंजन शुरू करता है चलना, तब फिर देखते हैं धक 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 सारे बोगी पीछे, उस इंजन के पीछे उसी रफ्तार से शुरू करते हैं जाना। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण की तुलना उस इंजन से की गई है, और वो भी कोई साधारण इंजन नहीं। कौन सा आजकल इंजन सब डबल पावर ट्रिपल पावर कौन सा? तो ये अनलिमिटेड पावर वाला इंजन भगवान श्री कृष्ण का जब केवल अपना हॉर्न बजाया ये इंजन, तो सारे पीछे के बोगी, ये सारे बोगी उसी रफ्तार से अपना अपना शंखनाद करना उन्होंने प्रारंभ किया। तो एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है कि यदि आप रेलगाड़ी को देखो तो बाकी सारे जो बोगी हैं वो ज्यादा मात्रा में हैं, इंजन एक ही होता है, ये सारे बोगी ज्यादा मात्रा में होते, परंतु एक भी बोगी हिलेगा नहीं अपनी जगह से जब तक कि इंजन नहीं खींचता। तो वैसे ही ये सारे योद्धा इतनी मात्रा में उपस्थित थे, और भगवान श्री कृष्ण आप देखोगे कि सही रूप से वो इंजन का रोल प्ले कर रहे थे, क्योंकि वो सारथी का वहां पर अभिनय ले रहे थे, तो इसलिए वो एक तरीके से वही चलाने वाले थे। और सबसे पहला बोगी कौन सा था इंजन के पीछे? अर्जुन का। इसलिए इंजन के बाद फिर जो अगला डब्बा अर्जुन का शंख बजा, और उसके बाद में भीमसेन, युधिष्ठिर महाराज और इत्यादि। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि यदि हमें भी हमारे आध्यात्मिक जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ानी है तो देख लेना चाहिए कि इंजन है कि नहीं, नहीं तो केवल बोगी लाके खड़ा कर दिया, इंजन ही नहीं है। तो इंजन होना चाहिए हमारी भी जीवन की गाड़ी के सामने, और वो इंजन जैसे इनके पांडवों की गाड़ी के सामने भगवान श्री कृष्ण का इंजन खड़ा था, उसी प्रकार से यदि हमारे जीवन के आध्यात्मिक गाड़ी के सामने हम इस इंजन को लगाए रखेंगे, और इस कलयुग में जो शंखनाद है इस इंजन का वो क्या है? हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु उन्होंने आकर इसका शंखनाद किया, इस हरे कृष्ण महामंत्र का। तो सोचिए जब भगवान अपना बजाते हैं शंख जब इतनी उच्च स्वर में, तो फिर बागी के जो सारे बोगी हैं इस रेलगाड़ी के, तो उसने तो उस रफ्तार में उस इंजन के साथ चलना ही होगा। तो हमें करना क्या है? हमें केवल बाकी बोगियों के साथ अपना संपर्क बनाए रखना है, और पटरी से नीचे नहीं उतरना, अपने बोगी को पटरी पर जमाए रखो और दूसरे भक्तों के संपर्क में बनाए रखो, तो गाड़ी यार्ड में पहुंचेगी नहीं, अपने गंतव्य स्थान में पहुंचेगी। और इस गाड़ी की विशेषता ऐसी है कि न केवल ये बोगी इंजन के साथ जाएंगे, परंतु ये बोगी में जितने ज्यादा भर सके बद्ध जीवात्माओं को ये भर सकेंगे, क्योंकि चिंता मत कीजिए भारतीय रेल है, और भारतीय रेल की विशेषता है कि यदि 500 की कैपेसिटी है तो 5000 भी आ सकते हैं, है ना? और कोई देश में ऐसी रेलगाड़ी नहीं कि कैपेसिटी 500 की और 5000 घुसे हुए हैं, केवल हमारा भारत, भारतीय रेल की यह विशेषता है। क्यों? क्योंकि भारतीय रेल में ही ऐसा इंजन फिट हो सकता है, जो चाहे कितने भी अंदर ठूसे वो गाड़ी चलेगी। इसलिए हमें इस यात्रा के साथ साथ जितने लोगों को हम अंदर घुसा सकें हमारे बोगी में, उतनों को हम घुसाएं, ताकि हमारे साथ साथ बाकी सब भी अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच पाए, भगवत धाम तक पहुंच पाए। और संजय इसके पश्चात अब वो धृतराष्ट्र को एक व्यंग्यात्मक दृष्टि से बोलते हैं, पृथ्वी पते। धृतराष्ट्र को बुला रहे हैं संजय कि हे पृथ्वी पते, इन सभियों ने अपने अपने शंख बजाए, सुनो। तो धृतराष्ट्र पहले सुन रहे हैं कि मुझे पृथ्वी पते क्यों कहा? पृथ्वी पते का अर्थ क्या है? जो पृथ्वी के पति हैं, जैसे लक्ष्मी पति, करोड़ पति, वैसे पृथ्वी पति। तो पृथ्वी पति किसे कहा जाना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण का नाम है। और क्यों भगवान श्री कृष्ण का नाम है पृथ्वी पति? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने माता पृथ्वी की रक्षा की थी जब हिरण्याक्ष ने इस पूरी पृथ्वी को गर्भोदक सागर में फेंक दिया था। तो भगवान कौन से रूप में आए थे? वराह देव के रूप में आए थे और उन्होंने पृथ्वी देवी की रक्षा की थी। और फिर भू वराह इनका विवाह हुआ। तो जब भूमि देवी और वराह देव इनका विवाह हुआ तो फिर वराह देव हुए क्या? भूमिपति या पृथ्वीपति? तो ये सारे पृथ्वी के पति हैं वराह देव। संजय देखिए बहुत गूढ़ मतलब बता रहे हैं। इस सारे पृथ्वी के पति हैं वराह देव और वो वराह देव केवल एक अंश अवतार हैं श्री कृष्ण के। और वो कृष्ण यहां पर खड़े हैं पांडवों के साथ। तो धृतराष्ट्र तुम्हें लगता है कि पृथ्वी का इतना सा तुम्हारा हस्तिनापुर भाग मिलेगा तुम्हें? तो इस देखिए एक शब्द जो कहा कि पृथ्वी के पति तो पांडवों के पक्ष में खड़े हैं धृतराष्ट्र, और तुम ये इतना सा हस्तिनापुर जो इतना छोटा सा एक पैच है इसे लेने के पीछे इतने उतावले हो। तो वो जो वराह देव जो पृथ्वी के पति उनके अवतारी यहां पर खड़े हैं, तो भूल जाओ धृतराष्ट्र की इसका कुछ भी तुम्हें या तुम्हारे पुत्रों को कभी मिलेगा। तो ये इतना सब संकेत संजय इन तीन श्लोकों में धृतराष्ट्र को दे रहे हैं, शंखनाद के द्वारा और पृथ्वीपति बोलने के द्वारा। और वहां का पूरा मुआयना करने के बाद धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं कि धृतराष्ट्र अब भी ये आशा मत रख, इस आशा को छोड़ दे और ये समझ ले कि ये यहां पर धर्म की स्थापना करने के लिए आए हैं और वो होकर ही रहेगा। तो इन दो श्लोकों का ये तीन श्लोकों का ये तात्पर्य आज हम सीख पाए। किसी का कोई प्रश्न? हाँ थोड़ा जोर से आपके बफोर्स गन की तरफ।
हाँ। और सभी जो भी कृष्ण भावना अमृत से उस कॉन्शियसनेस में देखते हैं तो वो सही एक्शन लेंगे, लेकिन आजकल के जो युग में जो लोग ट्रिगर हैप्पी हैं कहीं उनको वो कैसे बच पाए कि कोई भी वायलेंस करें तो वो बोलेंगे मैं ये कृष्ण विल बी हैप्पी विद दिस वायलेंस?
नहीं नहीं नहीं, इसलिए मैं कह रहा था कि उसे गलत मत समझिए कि कई बार लोग कहते हैं कि जैसे अर्जुन ने इतने प्रतिद्वंद्वी को मार दिया तो मैं भी गीता पढ़ने के बाद जाऊंगा रोड पे और फिर जो सबसे पहला मेरे बॉस को पकड़ूंगा।
So how should we refrain from that angle?
See, over here it's not been spoken about the physical violence which one has to undertake. The principle of doing things for Krishna, that has to be understood. That is ki jo bhi aap karein Bhagwan Sri Krishna ke aadesh ke anusar, aur Bhagwan Sri Krishna ka aadesh hame is kalyug mein kahan se milta hai? Unke jo pratinidhi hain guru, गुरुजन के द्वारा मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण क्या चाहते हैं। तो उनके जो प्रतिनिधि जो गुरुजन हैं वो बताएंगे कि आपको शस्त्र उठाना है या शास्त्र उठाना है। तो इसलिए इस कलयुग में हमें शस्त्र उठाकर भगवान उस यज्ञेश्वर को प्रसन्न नहीं करना। यहां तक कि जब वो यज्ञेश्वर भगवान आए उन्होंने कोई शस्त्र नहीं उठाया। चैतन्य महाप्रभु जगाए मधाई को मारने के लिए एक बार जब सुदर्शन चक्र उठाया तो नित्यानंद प्रभु ने रोक लिया और कहा कि ये अवतार शस्त्र उठाने के लिए आपने नहीं लिया भगवान। तो जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए उन्होंने कोई शस्त्र नहीं उठाया, परंतु उन्होंने उनके शस्त्र कौन थे? यज्ञो पार्षद, उनके जो पार्षद वो उनके शस्त्र बने और ये हरे कृष्ण महामंत्र। तो इसलिए इस कलयुग में यदि हमें इस पूजा को करना है सिद्ध, इस यज्ञ को सिद्ध करना है, तो वो यज्ञ कौन सा है? संकीर्तन यज्ञ। और संकीर्तन यज्ञ में आहुति किसकी देनी है? हमारी चेतना की। और यज्ञ सामग्री क्या है? ये हमारी इंद्रियां और यज्ञेश्वर हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। और इसलिए यह आहुति देते समय जो मंत्र है वो ये हरे कृष्ण महामंत्र। तो ये आप समझ लीजिए कि कलयुग में शस्त्र उठाकर उनको प्रसन्न नहीं करना, बल्कि शास्त्र को पालन करते हुए। और कोई प्रश्न है किसी का? पूछ।
तो बाहर प्रश्न करते हैं लोग कि कोई अपने पत्नी को कैसे जुए पे लगा सकता है? अभी कलयुग में भी जुआ खेलते लोग अपने पत्नी को कभी कोई जुआ पे नहीं लगाता।
अच्छा
तो उन्होंने अपने पत्नी को कैसे जुआ पे लगा सकता है? और दूसरा प्रश्न है कि भाई जी अभी वो भक्त
कलयुग में पत्नी लगा देती है पत्नी को
और दूसरा प्रश्न ये है कि
अभी एक एक, एक एक करके जाते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि पिछले युगों में इसे जुआ नहीं कहा गया, टेक्निकली इसको जुआ नहीं कहा गया। ये क्षत्रिय आपस में चौसर खेला करते थे, ये एक प्रकार की ललकार को सिद्ध करने के लिए कि जब भी किसी दूसरे क्षत्रिय राजा को ये क्षत्रिय राजा ललकारता, चाहे युद्ध के लिए चाहे चौसर के लिए, तो वो क्षत्रिय राजा मना नहीं कर सकता। यदि वो मना कर रहा है तो वो हार गया, कायर है। और यदि वो सही में क्षत्रिय है तो चाहे वो युद्ध हो या चौसर हो, उसे आकर वो लड़ना होगा। वो एक प्रकार की लड़ाई है वो। और इसलिए युधिष्ठिर महाराज, क्योंकि वो इतने धर्म के पालक थे कि उस क्षत्रिय धर्म के अनुसार आप यदि हार रहे हो तो आप के आपका जो भी प्रॉपर्टी है उसे आपको दांव पर लगाना है। तो वो उस क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे थे। आजकल से उसको आप कंपेयर मत कीजिए, तो आजकल तो खैर छोड़ दीजिए क्या चल रहा है। तो युधिष्ठिर महाराज उस क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे थे कि एक क्षत्रिय को जब ललकारा जाता है तो वो कैसे अपने धर्म से च्युत न होके उसे पूर्ण प्रकारेण चाहे उसे इस हद तक क्यों ना उस धर्म का पालन करना पड़े, ये कारण है। और दूसरा कारण भगवान की योजना थी, और ये केवल सूत्रधार थे, ये केवल सूत्रधार थे। क्योंकि यदि वो असत सभा नहीं हुई होती तो कोई कारण चाहिए था भगवान को इन सब को खत्म करने के लिए। इसलिए स्वयं द्रौपदी वो भगवान की सेविका बनी भगवान के इस कार्य को सिद्ध करने के लिए। ये दूसरा कारण है, क्योंकि भगवान चाहते थे कि भगवान जब धर्म की स्थापना करने के लिए कोई कारण ढूंढ रहे हैं तो सबसे उनके जो विश्वस्त सेवक हैं उन्हीं को तो इस्तेमाल करेंगे, उस कारण को पहले खड़ा करने के लिए, और फिर उस कारण की वजह से इन सब का संहार करने के लिए। तो यदि वो द्रौपदी को दांव पे नहीं लगाया गया होता तो इन सारे कौरवों को मारने का कारण नहीं बना मिला होता पांडवों को। वो एक दूसरा कारण। दूसरा प्रश्न
नहीं कि अभी जीवा जो है तो चार नियमों के खिलाफ है, तो पांच ही पांडव तो भक्त थे, तो ऐसे
नहीं, तो आप उसको जुआ बोल रहे हो, जुआ नहीं है, लेकिन वो क्षत्रिय धर्म का एक भाग है कि क्षत्रिय धर्म के अनुसार उन्हें जब इस प्रकार से कोई क्षत्रिय को ललकारा जाए तो वो जुआ क्या है आजकल कि आप 10 पैसा दो और 1 करोड़ लो, वो सब जुआ है। परंतु यहां पर ये लोग जब चौसर लड़ते थे तो इसमें ऐसा नहीं कि ये लोग, इनके पास कुछ पैसा नहीं और पैसा कमाने के लिए खेला जाता था, नहीं, ये उनकी शौर्यता दिखाने के लिए खेला जाता था। इसके पीछे का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं था, अपना शौर्य दिखाने का पीछे उद्देश्य था। तो क्षत्रिय अपना धर्म का पालन अलग अलग तरीके से करते थे, अपना शौर्य अलग अलग तरीके से दिखाते थे, और ये एक तरीका था अपना शौर्य दिखाने का। नहीं नहीं, शौर्य केवल शारीरिक शौर्य नहीं होता, आंतरिक शौर्य भी होता है कि आपके अंदर रिस्क लेने की हिम्मत कितनी है, तो वो भी एक शौर्य है। तो अंदर से यदि शौर्य नहीं तो बाहर से चाहे कितना भी बड़ा हो कोई, कई बार हम देखते हैं कि बाहर से व्यक्ति बहुत बड़ा होता है, बंबई में बहुत बार देखा जाता है कि लोकल ट्रेन में इतना सा व्यक्ति वो बड़े आदमी को चिल्ला चिल्ला कर चला जाता है और वो बड़ा आदमी देखता रहता है क्योंकि उसके अंदर से दम नहीं है उसमें, बाहर से खा पी कर वड़ा पाव खाकर बहुत बड़ा हो गया। लेकिन अंदर से वो फुग्गे के जैसे हवा केवल अंदर, तो इसलिए इसमें शौर्यता आंतरिक शौर्यता दिखाई जाती थी। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवद गीता ग्रंथराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। अभी कीर्तन होने वाला है तो आप लोग, इतना सब सुना हमने यज्ञेश्वर के लिए कलयुग में जो यज्ञ है अभी शुरू होने वाला है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
प्रभुपाद की ताई गौर प्रेमानंदी महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतम राजन विश्वासो नैव जायते शरीर विद्या जुड़ेन्द्रियता।